हेलो, रूहानी यात्रा कराने वाले ब्राह्मण कुलभूषणों को हम मधुबनवासियों के नमस्ते। आज सोमवार नवंबर की 20 तारीख है। प्रातः क्लास में शिव बाबा की मुरली सुनते हैं।
रूहानी बच्चों ने क्या सुना और किसने पूछा कि रूहानी बच्चों से सिर्फ रूहानी बाप ही प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि बच्चों को पहले ही समझाए जाते हैं कि आत्म अभिमानी होकर के बैठो। यह है पहले नंबर की ऊंचे से ऊंची सब्जेक्ट है। जब भी यहां बैठते थे और जो भी पुरुषार्थी होंगे अच्छे ब्राह्मण कुलभूषण, क्योंकि तुम्हारा कुल ही और भारतवासी तो क्या सारे विश्व से न्यारा है, क्योंकि तुम कहा जाते हैं सच्चे प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण, तुम डायरेक्ट ईश्वरी संतान हो, क्योंकि डायरेक्ट ईश्वरी संतान तो होने चाहिए नहीं संतान है। यूं तो भाई भाई तो सभी है आत्माएं, जिसको अंग्रेजी में ब्रदरहुड कहा जाते हैं, दूसरा भाई भाई है, सबका बाप एक भगवान है और उनको कहे जाते हैं भगवान, ऊंचे से ऊंचा भगवान, और कहे जाते हैं उनको क्रिएटर यानी रचता, इसका ये सारी रचना का, तो रचता और रचना के ज्ञान को तो कोई भी ऋषि मुनि तो जानते नहीं है, क्योंकि ये सभी प्राचीन ऋषि मुनि ये कहते आए हैं नीति नीति अथंत हम रचता को न जानते हैं तो गोया हो गया नास्तक, और फिर रचना को भी नहीं जानते हैं तो भी हो गए नास्तक, डबल नास्तक। जब सिंगल नास्तक बन जाते हैं तो डबल तो बनते ही हैं, इसलिए बाप कहते हैं कि पहले पहले तो अलफ याद करो, रचता को याद करो। तो रचना का आदि मध्य अंत का समाचार बाप आप ही समझाई देंगे, तुम बच्चों को जबक मालूम नहीं है रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, तो जरूर समझाने वाला ही समझाएगा, तुमको पूछने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि तुम तुच्छ बुद्धि थे, अभी नहीं कहा जाएगा तुमको तुच्छ बुद्धि, नहीं तुम सब पहले तुच्छ बुद्धि थे व पत्थर बुद्धि थे। देखो तभी तो ये गीत भी है ना, हे भगवान हमारा ज्ञान का दीपक आए करके जगाओ, क्योंकि हम अंधेरे में आए। तो बाप समझाते हैं कि द्वापर कलयुग इसको कहे जाते हैं अंधेरी रात, तो अंधेरी रात शुरू होती है जो फिर कलयुग के अंत में जाकर के घोर अंधारा होता है, इसको कहे जाते हैं घोर अंधारा। जब घोर अंधारा होते हैं तब पुकारते हैं कि हे भगवान हम घोर अंधारे में पड़े हुए हैं, आए करके हमारा ज्ञान का दीपक जगाए दियो, जो आत्मा है उनको आकर के तीसरा नेत्र ज्ञान का दियो, तुम जाग जावे। अभी सतयुग में तो कोई ऐसे नहीं पुकारेंगे कि हम घोर अंधारे में है, आकर के हमारा ज्ञान का दीपक जगाओ। देखो एक कहते हैं फिर दूसरे पिछड़ी में ढेर कहते हैं, ये भी तो गीत है नहीं बच्चे। अच्छा ये गीत है, ये इसी समय में होते हैं। सतयुग में तो ऐसे गीत कोई बनाएंगे भी नहीं, तो कोई गाएगा भी नहीं। क्यों? कि सतयुग में तो सबकी ज्ञान की ज्योत जग जाती है, क्योंकि तुम बच्चों को तीसरा नेत्र ज्ञान का तो देते ही हैं आकर करके, और तो कोई तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे ही नहीं सकते हैं। क्यों? कि ज्ञान का सागर तो एक ही है, ज्ञान के सागर अनेक नहीं होते हैं। नहीं, ज्ञान का सागर एक, सर्व की सदगति दाता एक। तो बच्चों को भी समझाए जाते हैं ना बच्चे, कि ये जो समझते हैं कि हमारे में ज्ञान है शास्त्रों का, वो शास्त्रों का ज्ञान तो है नहीं, वो है भक्ति। इस भी सारे भात तो क्या, सारी इस विश्व में इस सर्व में भक्ति का पहरा है, इसको कहा जाते हैं भक्ति कल्ट। और तुम बच्चों को अभी जो ज्ञान सूर्य है वो आकर के तुमको तीसरा नेत्र ज्ञान का दे रहे हैं, तो तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिल रहा है। और ज्ञान मिलता ही है ब्राह्मणों को, न देवताओं में ज्ञान है न शूद्रों में ज्ञान है, कि वर्ण भी तो होते हैं ना बच्चे। वर्ण तो बिल्कुल प्रिंसिपल गाए जाते हैं, क्योंकि वर्णों का ही तो ये चित्र भी बनाते हैं, उसमें दिखलाते हैं कि सर्वोत्तम कुल उत्तम है ब्राह्मणों का, क्योंकि चोटी है। तो एक है ब्राह्मणों के लिए भी गाया जाते हैं, एक है ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली, एक है ब्राह्मण। तो ऐसे नहीं कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा की कुख वंशावली, नहीं। फिर दूसरे है कुख वंशावली ब्राह्मण, सो तो तुम जानते हो वो कुख से पैदा होते हैं, यानी विकार से पैदा होते हैं। और तुम तो एक डप के चिल्ड्रेन हो, क्योंकि प्रजा पिता ब्रह्मा के ब्राह्मण और ब्रह्मणिया तो इतना ढेर कहां से आएंगे। इसको कहा जाता है एडप्शन। एडप्शन भी होता है, क्रिएटर को पहले पहले एडप्ट करना होता है, किसको? कन्या को एडप्ट करके उनको फिर माता कहा जाते हैं। जब बच्चा बच्चा पैदा करती है यूं भी, जब पति मिल जाते हैं तो फिर उनको माता ही कहा जाते हैं। तो कन्या से एडप्ट किया, कन्या को पैदा नहीं किया कुक्ष से एडप्ट किया। तो देखो तुम सभी है एडप्टेड चिल्ड्रेन, नहीं तो प्रजा पिता ब्रह्मा को इतने ब्रह्मा कुमार और कुमारियां आए कहां से? तो इसको कहा जाते हैं एडप्शन। तो पुरुष जब शादी करते हैं तभी भी कन्या को एडप्ट करते हैं, फिर उन कन्या को जब भी बच्चा पैदा होते हैं तो उनको मां कहा जाते हैं, फिर मां जब बुढ़ी होती है तो फिर उनको दादी भी कहा जाते हैं। ऐसे होते हैं नहीं, यहां दादी वादी नहीं होने की है तुम्हारे में, तुम्हारे में सिर्फ प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, अर्थात भाई और बहन। और विचार भी अगर किया जाए कि हम भगवान के संतान है, तो संतान है तो भाई भाई हो गए। पीछे प्रजा पिता ब्रह्मा के एडप्टेड चिल्ड्रेन तो भाई भाई हो गए, क्योंकि तुम्हारा संबंध सिर्फ ये एक संबंध है, और तो तुम्हारा कोई संबंध इनसे ज्यादा है ही नहीं, क्योंकि भाई भाई हो गए। तो जब भाई भाई हो गए इस हिसाब से प्रजा पिता ब्रह्मा के संतान बन गए और भाई बहन बन गए, तो भाई बहन के साथ कुदृष्टि रखना, क्रिमिनल आय रखना, वो तो क्रिमिनल असल्ट हो जावे। क्रिमिनल आंखों से देखना तो गोया क्रिमिनल असल्ट करते हैं, क्योंकि उन ख्याल से नहीं देखना है कि हमारी स्त्री नहीं चेंज हो गए। तो यही समझना कि हम दोनों अभी बहन भाई है, ये बड़ी मुश्किल है। ये जो आंखें है क्रिमिनल, वो काम बहुत करती रहती है, इनको जीतना बहुत मुश्किल होते हैं, इसलिए जो जीत सकते हैं उनको ये स्कॉलरशिप मिलती है, जो विजय माला के दाने बनते हैं। सब नहीं जीत सकते हैं, समझा नहीं, सब जीते ही नहीं, क्योंकि बादशाही स्थापन हो रही है, डीटी किंगडम स्थापन हो रही है। डीटी किंगडम कोई सत्युग में नहीं स्थापन होती है, जो कोई सत्युग के मालिक है नहीं। तो उन्होंने ये पद कहां से प्राप्त किया, जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो कैसे प्राप्त किया, तो पद प्राप्त कर किया ही जाते हैं पढ़ाई से। तो पढ़ाने वाला फिर अभी कौन है, क्या पढ़ाते हैं, है पढ़ाई, कोई दूसरी चीज नहीं है। इस पढ़ाई को ही रूहानी पढ़ाई कहा जाता है, क्योंकि रूहानी बाप बैठ करके रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। अंग्रेज में उसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाते हैं। अब स्पिरिचुअल नॉलेज सवाए ब्राह्मणों के और कदाचित कोई के पास होती ही नहीं है। ये जो गपोरा मारते हैं कि स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, फलाना करते हैं, ये मनुष्यों को यह मालूम नहीं है कि भारत का प्राचीन योग वो स्पिरिचुअल योग था, रूहानी योग था, जिस्मानी नहीं था। क्योंकि इस संगम युग पर तुम्हारा ये स्पिरिचुअल योग, क्योंकि तुमको जो पावन बनने का है तो बुद्धि का योग बाप से होना है, क्योंकि वो है पतित पावन। क्योंकि ये पॉइंट बहुत समझने की है, धारण करनी है, नोट करने की है, ये फिर भूल जाते हैं। भूल जाते हैं तब तो तुम देखते हो नहीं कि माला बहुत छोटी बनती है। राजा और रानी तो एक होते हैं, प्रजा देखो कितनी बहुत बनती है। क्यों ऐसा होते हैं, ये बहुत मुश्किल कोई है जो स्थिर बुद्धि रहते हैं। सभी कल्प कल्प की बात है, यह अनेक बार तुम बच्चों ने ज्ञान ऐसे ज्ञान लिया है। ये राजा और रानियां, महाराजा महारानियां, ये बहुत थोड़े बनते हैं। राजा रानियां भी तुम यहां बनने के लिए, ऐसे नहीं कि तुम पहले राम राजा और सीता रानी बनेगी ना, पहले पहले बनना ही है महाराजा श्री नारायण महारानी श्री लक्ष्मी। क्योंकि तुम यहां जो आते हो तो बनने ही आते हो, नर से नारायण बनने आते हो, तुम राम या सीता नहीं बनने आते हो वास्तव में, परंतु तुम इतना उच्च पढ़ाई पढ़ नहीं सकते हो, इसलिए फेल होते हो, मार्क्स में कम होते हो, तभी तुम राजा रानी का भी रखा पाते हो। और बाकी जो सरेंडर नहीं होते हो तो फिर प्रजा ही प्रजा बनती है, तो ढेर प्रजा बनती है, समझे नहीं? तो यह बनती है। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग है, तुम पुरुष उत्तम पुरुष यहां बनते हो। सत्ययुग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहा जाते है, कलयुग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहा जाते है, नहीं, ये कलयुग है सत्ययुग का, जो ये कॉन्फिडेंस है उनको कहा जाते है पुरुषोत्तम कॉन्फिडेंस युग। क्योंकि इस पुरुषोत्तम युग पर तो तुम नहीं कलयुग में हो, नहीं सत्ययुग में हो, तुम वही संयम कॉन्फिडेंस युग। तो कॉन्फिडेंस युग एक होता है, ऐसे नहीं है कि चार पांच होते हैं। सत्युग त्रेता का कॉन्फिडेंस युग, वो कोई कॉन्फिडेंस नहीं होते है, वो नहीं पुरुषोत्तम कॉन्फिडेंस युग है। न त्रेता द्वापुर उनका कोई पुरुषोत्तम कॉन्फिडेंस युग है, नहीं, उसमें पुरुष उत्तम नहीं बनते हैं, वो तो और ही गिरते आते हैं, नीचे उतरते हैं, तो उसको पुरुषोत्तम थोड़ी कुछ कहेंगे, नहीं, वो पुरुषोत्तम नहीं, वो कम होते जाते हैं। ये उतरती कला है, क्योंकि ये समझने की बात है कि उतरती कला है, तो उतरते जाते हो, नीचे सीढ़ी उतरते जाते हो, फिर तुमको चलना कब है, उत्तम कब बनना है, फिर कल्प के संगम युग है, जब तो घोर अंधेरे होते हैं, समझ नहीं, सब घोर अंधेरे में होते हैं, तभी तो ये गीत गाते हैं, नहीं तो इन गीत का अर्थ कोई कलयुग मनुष्य नहीं समझ सकेंगे, नहीं, सिर्फ तुम ब्राह्मण समझ, भले गाया हुआ कलयुग मनुष्यों का है, उस आत्मा है ना बच्ची, सभी आत्मा है ना, वो तो सच कहती है नहीं कि बाबा ये तो बहुत ही घोर अंधेरा है, बिल्कुल ही आओ आ करके तीसरा नेत्र ज्ञान का दियो। तो हम फिर तीसरे नेत्र ज्ञान का पाए और फिर उस नेत्र से, तीसरे नेत्र से यानी आत्मा के नेत्र से हम आत्मा से, फिर ऐसे कहेंगे कि आत्मा से हम अपने बाप को याद करें, क्योंकि बाप खुद कहते हैं कि हे बच्चों, रूहानी बच्चों, अभी ये तो तुम जानते हो सत्व प्रधान से तब तमो प्रधान बन गए हो। ये तमो प्रधान दुनिया है सारी, ये सत्व प्रधान दुनिया नहीं है। सत्व प्रधान दुनिया सतयुग को कहा जाते हैं, तमो प्रधान दुनिया कलयुग कहा जाते हैं। तुम फिर हो संगम युगी, पुरुषोत्तम युगी ब्राह्मण, क्योंकि कुल बिगाड़े जाते हैं ना बच्चे है। तो तुमको कुल का तो बहुत अच्छी तरह से समझाया कि तुम कैसे 84 जन्म है, कैसे उतरते आते हो। 84 जन्म का भी हिसाब चाहिए नहीं, तो 84 जन्म का हिसाब हमेशा उतराई का समझाया जाते हैं, कोई चढ़ाई का नहीं समझाया जाते है। नहीं, 84 जन्म मनुष्य कैसे लेते हैं, तो पुनर्जन्म कैसे लेते हैं, 84 पुनर्जन्म कैसे लेते हैं, नीचे उतरते जाते हैं। और पीछे तम प्रधान से सत्व प्रधान कैसे बनते हो, वो फिर बाप आ करके ये योग सिखलाते हैं। बुद्धि आत्मा का, आत्मा में है ना मन बुद्धि, तो आत्मा को समझाया जाते हैं कि अपना अभी जो बुद्धि है तुम्हारे में वो बाप से लगाओ, तो उसे क्या होगा, जो तुम पतित बन गए हो वो पावन बन जाएंगे। क्योंकि आत्मा पतित बनती है, उसमें ये सभी संस्कार गंदे रहते हैं, ये सन्यासी लोग नहीं जानते हैं कुछ भी, क्योंकि है ही तुम्हारे पास सिर्फ एक सन्यासी लोग है, और तो कोई है नहीं समझाने वाले। अब ये तो तुम बच्चों ने समझा है कि हठ योग सन्यासी हो गए, राजयोग सन्यासी तो है नहीं, तो हठ योगी कभी भी राजयोग नहीं सिखला सके, राजयोगी हठ योग नहीं सिखला सके, और नीचे कैसे ले जाएंगे। तो इनकी सिखाई बिल्कुल अलग है, परंतु पत्थर बुद्धि होने कारण, तम प्रधान बुद्धि होने कारण व तुच्छ बुद्धि होने कारण, कि तम प्रधान को तुच्छ बुद्धि पत्थर बुद्धि भी कहा जाते हैं, समझ ली। अब ये किसने कहा है, भगवान वाच्य, किसको कहा है, अपने बच्चों को कहा है कि तुम पत्थर बुद्धि हो गए हो, अभी आकर के पार्थ बुद्धि बनो। ये जो भी मनुष्य मात्र है सारी दुनिया में, वो सभी है पत्थर बुद्धि, तम प्रधान बुद्धि, पतित बुद्धि, देखो जरूर पतित बुद्धि होंगे नहीं, पावन बुद्धि होते ही है सतयुग में, और पतित बुद्धि होते ही है यहाँ कलयुग में। तुम यहाँ कभी भी किसको पावन आत्मा कभी नहीं कह सकते हो, तुम पतित आत्मा ही कहेंगे, क्योंकि पावन आत्मा के लिए तो पुकारते हैं नहीं, हे पतित पावन आओ, आकर के हमको पतित से पावन बनाओ। तो जब बाप आकर के बनाए ब्रह्म को तभी तो पावन हो, नहीं तो पावन कहां से आ गई। तो देखो पतित है पावन बनने के लिए, तो जानते ही नहीं है, कहते हैं मुख से बुद्धि से हे पतित पावन आओ, परंतु फिर भी भक्ति मार्ग होने के कारण वो फिर भी कह देते हैं हे पतित पावनी गंगा, तो जाते हैं गंगा के पास, वहां जाकर के घुटकर खाते हैं, समझे। तो इसको कहा जाएंगे अज्ञान, ज्ञान तो नहीं, ज्ञान का सूर्य चमके तो फिर बाप को याद करें, और ये जाते हैं गंगा के ऊपर, ये बिल्कुल सिद्ध होते हैं बिल्कुल, कि गंगा कोई पतित पावनी थोड़ी है, ताली भी बजाते हैं पतित पावन सीताराम, कोई गंगा जमुना को तो नहीं कहते ना पतित पावनी। फिर भी पत्थर बुद्धि तो इसको ही कहा जाते हैं बिल्कुल ही अति पत्थर बुद्धि, यानी बेसमझ, कुछ भी समझ नहीं मनुष्य में, इसलिए बेसमझ मनुष्य को इसलिए कहा जाते हैं। तो शिकिल सूरत है तो मनुष्य की है, सीरत बंदर की है। तो देखो बाप बैठ करके सिद्ध करके बताते हैं कि देखो है शिकिल तो सबकी मनुष्य की है, तो इनकी भी मनुष्य की है। देखो महिमा करते हैं, ठीक है ना बच्ची, अभी मनुष्य मनुष्य की महिमा करते हैं, कोई फर्क तो होंगे ना। तो देखो वो पूज्य और फिर जो पुजारी है वो महिमा करते हैं, तो पूज्य होते हैं सतयुग त्रेता, पुजारी फिर होते हैं द्वापर कलयुग, पूज्य कभी होते ही नहीं है, समझे ना बच्चे। यहाँ तो अभी सबको पूज्य कह देते हैं, पर सच्चा सच्चा पूज्य जो फिर पूजा नहीं करे, ऐसे पूज्य सत होते ही है सतयुग में, वो कोई पूजा थोड़ी करते हैं, यहाँ पूजारी है तो वो पूज्य है। तो मनुष्य जब गायन कहते हैं तो उनका कहते हैं भगवान का, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। ये ऐसे नहीं कहते हैं कि आप ही पूज्य बनाते हो फिर वही पुजारी बनते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं। ये कहते हैं आप यानी भगवान को कहते हैं आप ही पूज्य और आप ही पुजारी। ये क्यों कहते हैं आप ही पूजा, आप ही पूज्य बनते हो फिर आप ही लीला करने के लिए पुजारी बनते हो, आप ही फिर पूज्य बनते हो, वो ऐसे तो इसको कहा जाएगा नहीं घोर अंधारा। तभी घोर अंधारे वाले कहते हैं कि हे ज्ञान सूर्य आए करके हमारा ज्ञान का सूर्य जगाओ, क्योंकि हम घोर अंधारे में पड़े हैं। तो ये पुकारते रहते हैं, तुम नहीं पुकारेंगे क्योंकि तुम अभी पुरुषोत्तम बन गए हो, तुमको बाप मिला हुआ है। और ऐसे भी जानते हो बच्चे कि कल्प कल्प हर 5000 लाखों वर्ष नहीं, तुम्हारे बुद्धि में यह है कि हर 5000 बाबा आते हैं हमको आकर के राज देते हैं, राजा ही सत्य के राजा ही, तो राजा ही तो सबको नहीं मिलती है नहीं, राजा बनते हैं प्रजा भी होती है। प्रजा बिगर कभी कोई राजा सुना है क्या तुमने? राजा प्रजा बिगर होता ही नहीं है कभी भी, महाराजा भी प्रजा बिगर तो नहीं हो सकते है नहीं। तो बाप आते हैं तुम बच्चों को ऐसे देखो, ये पवित्र अभी ही पवित्रता की यह निशानी है बाबा ने समझा ना बच्चे। ये जो भी इस समय में तुम योग लगाते हो, जिसको योग बिल्कुल नामी ग्रामी है प्राचीन भारत का योग, सो योग इसको कहा जाते हैं। नहीं तो योग का अर्थ ये भारतवासी कोई भी नहीं जानते है, ये तो हठ योग को जानते हैं सन्यासी। सन्यासी कभी भी राजयोग से खिला ही नहीं सकेंगे, 100% इम्पॉसिबल। तो ये सभी तुमको उनको तो मालूम नहीं है ना, वो तो झूठ मूठ जाकर के राजयोग कहते सिख रहे थे। तो तुम लोग को ये अखबार में डालना होते हैं कि मनुष्य कभी भी किसको राजयोग सिखला नहीं सकते हैं, मनुष्य में सब आ गए एकदम, क्योंकि वो तो है उचित ऊंचा भगवत, वो तो उसको कहा ही जाते हैं भगवान, उनको शरीर तो होता ही नहीं है ना बच्चे। ब्रह्मा को भी देवता कहते हैं, विष्णु को देवता, शंकर को भी देवता कहते हैं, भगवान तो नहीं कहते है नहीं। तो मनुष्य जब उनको भगवान नहीं कहा जाते तो मनुष्य को भगवान कहते हैं, फिर आजकल के तमो प्रधान मनुष्य को भगवान कैसे कहा जाए? तो बाप व्यक्ति के समझाते हैं कि हठ योगी जो अपन को भगवान कहते हैं तो इनको कोई पता तो पता ही नहीं कि हम तमो प्रधान बन गए हैं, हम तुच्छ बुद्धि है। योग बाप समझाते हैं कि भक्ति आस्ते आस्ते तुच्छ बुद्धि को ले जाती है, किसी भी उतरते हैं नहीं भक्ति में, भक्ति है भक्ति माना दुर्गति। दुर्गति ऐसा अगर कहेंगे तो सतयुग से लेकर के नीचे फिर दुर्गति आती है, समझा नहीं? परंतु नहीं, सतयुग त्रेता में फिर भी पवित्र रहते हैं, इसलिए उनको दुर्गति वाले नहीं कहते हैं। पीछे तो आते ही है राम राज्य, तभी फिर वो वाम मार्ग में जाते हैं, वहां तो पवित्र रहते हैं। नहीं तो उतरने की बात कोई कहे कि 84 जन्म कैसे लिया जाते हैं, तो ये तो समझते हो नहीं कि सतयुग से बस पहला श्री लक्ष्मी नारायण अगर हुआ तो भी अगर उनको कहेंगे तो 84 जन्म और 5000 वर्ष पूरे, सो कोई भी नहीं, 5000 से पीछे 4090 भी तो होगा, 900 भी तो होगा नहीं, 4850 भी तो होगा नहीं, क्योंकि 150 वर्ष तो आयु होती है, तो भी तो हम 5000 तो नहीं कहेंगे। 5000 पूरा किसको कहेंगे? सब कहेंगे तो श्री कृष्ण को कहेंगे, क्योंकि ये है पहला महाराज कुमार एकदम नंबर वन, बस जन्म लिया 5000 उस समय से गिनेंगे, पीछे तो बरस बरस कम की होता जाएगा नी, 4999 भी तो हो जाएगा नी, एक बरस भी तो कम की तो हो गया नी, उसको 5000 पूरा तो नहीं करेंगे। 5000 पूरा किसको कहेंगे? श्री कृष्ण के। इसलिए श्री कृष्ण को इतना प्यार करते हैं, श्री कृष्ण के ही लिए कहते हैं श्याम और सुंदर, बस सुंदर पैदा हुआ और सुंदरता की मेहमान निकली, समझा नहीं? उसका जब जन्म होते है नहीं बच्चे, बात मत पूछो, जैसे कि ये रोशनी फैल जाती है, वो इतना प्रभावशाली है। क्यों? कि जैसे बाप चकमक 100% प्योर, जैसे वो बच्चा भी 100% प्योर। तो समझा जाते हैं नहीं बच्चों को, तो 100% प्योर श्री कृष्ण, दूसरा कोई भी नहीं। तो इसलिए कृष्ण की महिमा सबसे, तो राधे को क्यों नहीं झूलते हैं, झूलाते हैं पिंजरे में, तो पूरा एकदम। अभी ये बात तो किसको मालूम नहीं है ना बच्चे, बाप बैठ के समझ जाते हैं कि पूरा पा चला, बस बस जन्म लिया, बस उनसे उनका शुरू हुआ। पीछे तो दिन हुआ होगा नहीं, फिर बड़ा होगा नहीं भाई, आज आज दो दिन का है, तीन दिन का है, चार दिन का है, छह दिन का है, भाई 36 मनानी है, बस इतना भगवान हुए। इनसे तो दूसरा होता ही नहीं है, क्योंकि राधे भी तो पीछे हो जाती है नहीं, वो भी तो दो तीन बरस कम की होती है नहीं, तो दो तीन बरस भी तो कम की हो पड़े नहीं, वो एकदम। अभी ये बात तो समझने की है नहीं बच्चे, कि 5000 बरस पूरा है कि रेट, इसलिए उनकी महिमा है बहुत। राधे को भी नहीं झुलाते हैं, क्योंकि कोई 5000 बरस पूरा थोड़ी है। तो ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो मनुष्य न जानते हुए भी पिता को कृष्ण को बहुत याद करते हैं, क्योंकि उनकी महिमा जन्म की वो बहुत चमत्कारी होते हैं। क्योंकि तो बच्चे समझ गए ना कि आत्मा जो वो बिंदी है वो 100% प्योर बन जाती है। और अभी तो कोई 100% प्योर तो नहीं है, नहीं अभी तो पतित है नहीं बच्चे, तो पतित और पावन का फर्क देखो, तभी तो गाए जाते हैं नहीं, श्याम वो सुंदर। अभी इनका अर्थ जैन सुंदर माने ही सुंदर, क्यों एक के लिए क्यों याद कहते हैं, राधे के लिए क्यों नहीं कहते हैं, प्रश्न पूछते हैं नहीं क्यों। तो बाप बच्चे समझ जाते हैं फर्क, कितना थोड़ा फर्क है, तो भी देखो उनको नहीं कहेंगे श्याम सुंदरी, उन्हें कहे कहेंगे शुभता ये श्याम सुंदर एक के ऊपर। तो ये सभी बातें बैठ करके बच्चों को समझाते रहते हैं कि बच्चे ये सभी अच्छी तरह से समझ जाए और किसको भी समझाने में समर्थ हो। तो जो समझते हैं, लिखते हैं, समझाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इसमें प्रैक्टिस चाहिए ना समझाने की भी। तो जिसकी जास्ती प्रैक्टिस होती है वो इंग्लिश में भी समझाते हैं, हिंदी में भी समझाते हैं, जो जो भाषा अच्छी तरह से जानते हैं उसमें समझाते हैं। अभी इंग्लिश में भी समझाते हैं, अभी तो वहां जाओ कैनेडी में भी समझाते हैं, अभी जैसे गांव में जाओ लाएंगे तो अलग है, गुजराती में भी तो समझाना पड़ते हैं, उर्दू में एक तरह नहीं मूंझते हैं कोई, उर्दू वाले हिंदी समझ जाते हैं, इंग्लिश भी समझ जाते हैं, बाकी जो ये मद्रासी है वो माया माया नहीं जानती है बिल्कुल ही, उनको फिर चाहिए ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेट जो करते हैं उनका पता है कितना मान होते हैं, जो 8-10 लैंग्वेज जानते हैं अरे उनकी बहुत कीमत होती है। देखो वो यहाँ भी होते हैं दिल्ली में, ये काउंसिल में आकर के बैठते हैं, जब भाषण होते हैं तो सभी भाषाओं में वो समझाते रहते हैं, जो सभी भाषाओं में समझते जाए, वो भी पल बन तो रखा है ना बच्ची, तो उसका पगार कितना होगा, बहुत अच्छा पगार उनको मिलता होगा। क्यों तो पगार तो एक दो से जास्ती होती है, इन सब से तो जास्ती साइंस घमंडियों को मिलता है पगार जास्ती, क्योंकि खर्चा उनको मिलता है जो ये बॉम्ब्स बनाते हैं। ये बॉम्ब्स, अभी बॉम्ब्स जिसको नाम कहते हैं वो तो मौत के लिए नहीं, एरोप्लेन की बात तो छोड़ दियो, वो तो बड़ी घूमने के लिए, पर जो बॉम्ब्स हम कहते हैं तभी तो समझेंगे ना, ये बॉम्ब्स की जो यही मिसाइल है जो एक दो को लड़ाते हैं टकराते हैं, इनसे तो ये मनुष्य समझते हैं कि विनाशी होने का है। बॉम्ब्स तो भाई अच्छा एरोप्लेन, चलो भाई ये स्वर्ग की निशानी है, अभी बॉम्ब तो स्वर्ग की निशानी दे, बॉम्ब स्वर्ग में तो नहीं होते नहीं, वो तो संगम युग में होते हैं। तो ये तो जरूर समझना चाहिए ना बच्चे, भाई एरोप्लेन तो बहुत बड़वा होते हैं पर जो बॉम्ब तो नहीं होते ना, बॉम्ब तो नहीं गिरेगा सत्युग मौत के लिए, ये तो विनाश की निशानी है नहीं। अच्छा ये भी तो समझ जाना चाहिए नहीं कि भाई इनसे विनाश होते हैं, जरूर तो विनाश होते हैं इनसे, ये पक्का है। तो मनुष्य को समझना चाहिए नहीं कि भाई विनाश तो सामने खड़ा है ये, क्योंकि एक तो ये निशानी, दूसरी तुम ज्ञान सीख रहे हो, बाप भी यहां हुआ है, तो जब ज्ञान पूरा होगा विनाश तो जरूर होगा। ये भी तो बुद्धि का काम है नहीं समझने का, परंतु इतना अभी बैठ करके समझाते हैं तो कुछ न कुछ बुद्धि में बैठते हैं, क्योंकि उस समय में सुनते हैं, सुनते हैं उस समय में समझते हैं, फिर जो गाय जाते हैं वहां की वहां रही, तो बस फिर यहाँ बसिया से उठे बाहर निकले और ये जो अभी ताजी समझौते हैं ना वो पावती बन जाती है, गुम हो जाती है एकदम। अगर गुम न हो, धारा हो तो पीछे वो तो सर्विस करते रहे नहीं, पर तो नहीं सर्विस कर सकते हैं तो कितना इनका हिस्सा खत्म हो जाते हैं, नहीं तो कितना पूरा बाबा समझाते हैं अच्छी तरह से। ये जो समझानी बाबा देते हैं, ये बैठ करके कोई भाषण भी करो कहा तो भी तुम्हारी हियर हियर हो गई, ये तो बिल्कुल क्लियर बताते हैं, समझा जी है। तो अर्थ गीत का निकाला, पंडितों को गीत का अर्थ कितना सारा रचता और रचना के आज मंदिर का समझा दिया बच्चों को राज। परंतु होता क्या है कि ये तो जरूर है नहीं, जैसे टीचर है पढ़ाते हैं पीछे सुनते तो सभी है स्टूडेंट्स, पर कोई के अंदर में धारा होती है, कोई के अंदर में नहीं होती है, कोई पास हो जाते हैं तो कोई फेल हो जाते हैं, फेल भी बिल्कुल ही फेल हो जाते हैं एकदम, सुने क्योंकि ये तो बड़ी नॉलेज है ना एकदम, इसमें तो मतलब बहुत करोड़ों को नॉलेज मिलने की होती है, तो इसमें तो फिर भी प्रिया में तो आ जाते हैं, कभी भी तो ये कहेंगे ना इसने नॉलेज तो लिया है नहीं सर, तभी तो प्रिया में आते हैं नहीं। बाकी जो समझते हैं कि हम कोई ये लक्ष्मीदार बने, उनके तो चेहरे नए नए बातचीत करना ये तो बिल्कुल ही न्याय होते हैं, वो कोई छुपे थोड़ी रहते हैं ना बच्चे, वो तो अपना शोक करते हैं और शोक करते हुए भी अयक माया का तूफान लेटा दिया एकदम पूरा, क्योंकि बहुत लेटाते हैं किसमें, ये काम जो शत्रु ने उसमें बहुत लेटा देते हैं, वो बड़ा तीखा दुश्मन है, उस दुश्मन के कारण कौन है फिर ये आग की। तो ये सभी जो बाप बैठ के समझाते हैं इसको तो ज्ञान कहा जाएगा नहीं बच्चे, कभी ये गीत भी है नहीं हे भगवान, बस भगवान के लिए कहते हैं नहीं, आए करके हम घोर अंधेरे में पड़े हैं, आ करके ज्ञान का दीपक जगा के जाओ, तो भगवान को ही कहते हैं नहीं, अब भगवान कब आएंगे वो तो घोर अंधेरे में है, वो तो अभी बोलता है 40,000 वर्ष के बाद आएंगे, तो भाई वो तो घोर अंधेरे में है, तो इसलिए जो कुछ भी कल पहले हुआ है ये सभी कौरव है विनाश काले विकृत बुद्धि, तो यही ख्याल से घोर अंधेरे में सब तो आते नहीं है, नहीं आने के नहीं है, आएंगे वही जो कल पहले आए हुए हैं, ये भी हम सब जानते हैं, तो जरूर विनाश होंगे नहीं जरूर, क्योंकि सभी नेचुरल कैलमिटीज वो तो आएंगी तो जरूर, तो कल्प कल्प आती है, अगर ना आते होते तो क्यों साक्षात्कार क्यों कराया, कल पहले भी साक्षात्कार कराया अभी भी साक्षात्कार कराया, उन्होंने तो एक के लिए लिख दिया है क्योंकि वो गीता तो झूठी है, परंतु कुछ न कुछ आते में लूं, अभी यहाँ तो प्रैक्टिकल में है नहीं, तो एक को थोड़ी होते हैं बहुतों को होते हैं, अरे ऐसे बहुत है जिनको इनका भी साक्षात्कार होते हैं ढेर, इनका तो साक्षात्कार क्योंकि वो तो है बिंदी, बिंदी का साक्षात्कार से कोई समझेगा भी नहीं, क्योंकि जो सुनाया खंड सूर्य थे जो मैं ये फला उसका नहीं, अभी भला और किसका कभी उनको साक्षात्कार हो जो माने ब्रह्मा का बेदर दूसरे का किसका मानेगा, क्योंकि अभी जो ब्रह्मा देख लेते हैं नहीं सभी गालियां देते रहते हैं ठीक है नहीं। अच्छा मेरा अगर कृष्ण होता तो कृष्ण को गाली क्यों देते थे भाई कोई देते, तो ये तो सिद्ध कर दिया जाए कि कृष्ण तो कभी नहीं था जिसने ये सुनाया, वह भगवान ने आकर के कृष्ण में सुनाया, ये भी जो नहीं हो सकते हैं, तो बाप तो अभी कहते रहते हैं मुझे कोई शत्रुघ्न में याद तो नहीं करते हैं, तो कृष्ण में कैसे आएंगे, आएंगे भी जिसमें जो पति तो गावन में आएंगे पावन में कैसे आएंगे, क्योंकि पराये शरीर में पराये दुनिया में, तो पराई दुनिया तो ये है नहीं, ये यही है पराई तो सत्यु की तो अपनी है, तो ये भी तो रॉन्ग हो जाते हैं ना बच्चे, तो बाप आकर के हर एक बात राइट समझाते रहते हैं कि भाई तुम जज करो, कृष्ण कृष्ण वाली कैसे बैठ करके मुरली सभी भला मुरली क्यों दिखलाई है काट की मुरली क्यों, और कृष्ण वाली सत्य रामा का मनुष्य का मनुष्य ही ऐसे केल पतली और ऐसे ऐसे तालमाल थोड़ी कुछ होते हैं कुछ नहीं, ये सभी गपुरे सपुरे सब लगा दिया। अच्छा ले आओ टोली, ज्ञानों से बड़े ज्ञानों से ये बड़ा सहज है, इसीलिए इसका नाम ही है सहज याद योग और सहज ज्ञान। और तुम समझते हो बहुत सहज है, अति सहज है, बंधु नहीं, बहुतों के लिए बिल्कुल ही मुश्किल है, धारणा नहीं होती है। क्यों? योग में नहीं रहते तो धारणा नहीं रहती है, उड़ जाती है, किसी दासी हो गई ना जैसे, तो क्रांति रख दो तो फिर दासिया का निकल जाएगा। मीठे मीठे रुमानी बच्चों पर, रुमानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।